Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dank, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hum hamesha ki tarah desh aur duniya ki चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग।
थैंक यू अमरीश। यस, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड विद गेन्स ऑफ ओवर 1.5%। सेंसेक्स सर्जेस ओवर 1,390 पॉइंट्स। निफ्टी क्लोजेस अबव 23,700। Mobile manufacturing units in India register growth from 2 in 2014 to over 300, says Electronic and IT Minister Ashwini Vaishnaw. And China announces imposition of retaliatory tariffs on US products.
घरेलू शेयर बाजार 1.5% से अधिक की तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,390 अंकों को पार कर गया। निफ्टी 23,700 अंकों के ऊपर बंद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां 2014 की 2 से बढ़कर 300 इकाइयों तक पहुंच गई हैं और चीन ने जवाबी कार्रवाई में अमरीकी उत्पादों पर शुल्क लगाने की घोषणा की। और आज की पहली खबर, कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए शुल्क को रोकने की अमेरिका की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में चौतरफा बिकवाली के चलते सूचकांकों में आज 1.5% से अधिक का उछाल दर्ज किया गया। 30 शेयरों पर आधारित बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 1,397 अंक यानी 1.81% की बढ़त के साथ 78,584 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 378 अंक यानी 1.62% की तेजी के साथ 23,739 अंकों पर जा पहुंचा। बॉम्बे शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी महत्वपूर्ण बढ़त दिखाई दी। मिड कैप सूचकांक 1.3% से अधिक बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में बढ़त 1.2% की रही।
All right, let's take a look at the stocks in detail now. Well, benchmark domestic equity indices today surged over 1.5% amid broad-based buying and positive global cues after the US paused planned tariffs on Canada and Mexico. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, soared 1,397 points or 1.81% to close at 78,584. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 rose 378 points or 1.62% to settle at 23,739. The broader market indices at BSE also ended with significant gains. The mid-cap index advanced over 1.3% and the small-cap index gained 1.2%. In the Sensex Index, 24 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Larsen & Toubro rose over 4.7%, Adani Ports advanced over 3.8%, and Indus Inn Bank gained 3.5%. Meanwhile, in the top laggards, ITC Hotels tanked over 4.1%, Zomato shed more than 1.5%, and Nestle India dropped over 0.8%. In sectoral indices at the BSE, all sectors ended in positive territory except FMCG, which fell 0.13%. Among the top gainers, capital goods surged over 3.4%, industrials added almost 2.6%, and energy increased 2.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,509 companies advanced and 1,410 declined, while 154 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 34 companies hit their 52-week high, while 48 hit their 52-week low. So, Odin, what do you think are the reasons of this? Sounds like good news. The Sensex closing at 78,584, a raise of 1.81% after a bit of showing nervousness in the past few days.
Yesterday it was looking a little difficult with those announcements coming from the USA regarding the import tariffs.
Mm-hmm.
But Lalima, I would say that this is a relief rally, you know, that things were not looking great simply because when something like this happens, the dollar strengthens, which was being expected that if something like this happens, will dollar strengthen and all the other currencies will weaken. And there's a lot of important things that we import. So that puts a lot of economic pressure on us. And then when the currency depreciates, then in terms of attractiveness, in terms of investments for foreign investors, that also gets impacted. I mean, there's a long list.
Mm-hmm.
And they're very well documented.
Mm-hmm.
So you would have seen that happening and the relief. And the first markets to get the relief would have been the Asian and Indian markets. Of course, Indian markets and other Asian markets. But as the day has progressed, I suspect that, you know, what you would be seeing in the, maybe in the, you know, it's getting captured in your European markets headlines.
Mm.
The sense out there is that markets are not fully digesting. International markets are fully digesting what's happened. And the sense is that this is not over till it is actually over. And probably for the next 1 month, because this whole thing has been put off by a month. So there has to be a discussion. People have to say that, okay, bygones are bygones. This is the new agreement that we are going to have. So that is not over, number one. Number two is important thing is China has announced certain things. They want to have a conversation. US also wants to have a conversation. Let's not forget these are the number one and number two economies of the world.
Right.
So if they get into a messy fight, then it'll be a problem. And this time, it's a little more than what was there in the previous administration of the current president, US president.
Mm-hmm.
So it's till this gets sorted out. Now, you can put any amount of time for this thing to get sorted out. Maybe the North American issue will get sorted out quicker.
Mm-hmm.
But US and China, it's probably is going to take time. And that is going to get... Periodically, when you're going to get these headlines, the markets are going to reflect.
लेकिन उदयन जैसा आपने खुद ही कहा कि अभी चाइना के बारे में तो चाइना ने रिटेलिएशन में भी टैरिफ लगा दिया है यूएस के गुड्स पर और ये भी टेम्परेरीली सस्पेंड किया है मैक्सिको का और कनाडा का तो ऐसे में कोई ऐसी मेजर रिलीफ जैसी तो कोई चीज थी नहीं लेकिन फिर भी हमारे जो बाजार हैं उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और काफी उछाला
कई बार क्या होता है कि वो एक मोमेंटम के साथ मतलब एक बार मार्केट का डायरेक्शन जब जिसे एनिमल स्पिरिट्स कहते हैं वो दोनों तरफ जा सकता है जब फियर लेता है तो मतलब जब डर या आपको एप्रिहेंशन है तो आप ओवर सेलिंग कर देते हैं आप ओवर एग्जुबरेंस होता है तो आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं सो यू बेसिकली जैसे प्लेन है रनवे से टेक ऑफ करते हैं लैंड करता है आप सोचिए कि उसने ओवरशूट कर गया रनवे को वो होता नहीं है पर ये मार्केट्स में दे मूव समटाइम्स दे टेंड टू मूव अहेड ऑफ देमसेल्व्स तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है एंड फिर वो एडजस्टमेंट भी हो जाता है तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये एक्शन हम जो देख रहे हैं पिछले दो एक तीन चार दिनों में जो बात हुई थी जो धमकी दी जा रही थी वो धमकी पूरी हो रही है और लोगों ने अभी तो चाइना पे बात रुकी है तब अमरीकी राष्ट्रपति का कहना है कि अगली बारी तो यूरोपियन यूनियन की है सो यूरोपियन यूनियन इन टर्म्स ऑफ एज अ मार्केट, मतलब एज अ कंट्री तो वहां पे कई देश हैं, पर एज अ मार्केट वो बहुत बड़े हैं. और अगर वहां पे होता है फिर एक स्टोरी और वो ऐड हो जाती है. अब इसमें क्या, क्यों स्टॉक मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो अनसर्टेनिटी बनी रहती है. तो जब हम निवेश कर रहे हैं तो स्टॉक्स जो हैं वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं. फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह नहीं है कि आपको अपने पैसे डाले आपको मालूम है कितना होगा, अनलेस कुछ उसमें भी रिस्क रहते हैं, ऐसी बात नहीं है. पर यहाँ पे वॉलेटिलिटी, प्राइस मूवमेंट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा हो जाता है. तो तब अगर आपको विजिबिलिटी नहीं होती, आपको लगता है, आपको मालूम नहीं कि कब जाके आपको रिटर्न मिलेगा, आपको ये भी मालूम नहीं प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी, बिजनेस कंडीशन भी पलट रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी भी पलट रही, इतने सारे अननोन होगा, तो आदमी ज्यादा रिस्क क्यों लेगा.
लेकिन ऐसे समय में जब हम लगातार ये बात करते हैं कि हमारे अपने फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का इतना ज्यादा इम्पैक्ट, चाहे वो पॉजिटिव हो जैसे कल था या आज जिस तरह से हुआ, तो इतने सडन रिएक्शंस कैसे हमारे मार्केट में फिर आते हैं.
वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं हमारे काफी. जब हम बुलिश रहते हैं, बहुत जबरदस्त मार्केट में उछाल होता है, आप पाएंगे भारतीय निवेशक जो इंस्टीट्यूशंस हैं और वो दोनों एक तरफ मूव कर रहे हैं, कई बार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. कोई खरीदता है तो बाहर के लोग बेचते हैं, तो ऐसा चलता है. पर क्या होता है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर, ग्रुप ऑफ लार्ज प्लेयर्स वो बेच रहे हैं, तो मार्केट के डायरेक्शन में तो इम्पैक्ट होगा क्योंकि इंक्रीमेंटल फ्लो तो उनका जबरदस्त आ जाता है. तो उनका जो एग्जिट एक्सोडस बाहर जा रहा है उससे असर तो पड़ रहा है इसमें कोई. पर थैंक गॉड कि हमारे भारतीय निवेशक हैं, वो असर आने नहीं दे रहे. अगर ये आज से 20 साल पहले होता तो कहने की बात ही नहीं, कुछ और ही
सब कुछ हिल जाता. हाँ, सो वी कैन से, आई थिंक आई वाज अबाउट टू से व्हाट अमरीश आस्क्ड, दैट कैन वी से दैट आवर गुड और हैप्पी बजट, आई एम कॉलिंग इट अ हैप्पी बजट, इट वाज स्लाइटली ओवरशैडोड बाय द ट्रंप टैरिफ्स कोट एंड कोट, बट सडनली द मार्केट्स रियलाइज दैट नो वी आर डोमेस्टिक फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, सो वी आर फाइन, वी आर गुड. इज दैट हाउ वी कैन पिक्चर इट दैट वे?
दैट्स द वे द गवर्नमेंट वुड वांट you and I to think. And that was the whole idea. I mean, and they're on record. They said that, see, we know that external forces and factors would be at play. So therefore, this is the ammunition we have given so that we know this for sure, that this is something that you can influence. When you have many unknowns, then you would like to play with some definite knowns.
Right.
So that's what the government has done. It's a very common sense approach that they have done. They had to do a balancing act. The markets have bought the math broadly. If you see the debt market, they seem to have bought the math behind it. They don't think there are unreasonable expectations. So on those grounds, you can count them as one of the blessings. You know, when things are all hunkered, getting unsettled, you would like certain things which you can, you know, that okay, this is not going to change. So you know that there are few constants out there. Then you can deal with some of these things bit by bit, and you can, you know, have a strategy of dealing with it.
A corollary question to this, Abhish, if I may ask, it would be that now that, you know, it's when we look at the tariff war happening between US and China, we were visionary enough to foresee all this at some point, and we got down to the Atmanirbhar Bharat principle or mission much long back. And in the budget also, when we talk about semiconductors, when we talk about lithium batteries, that is also a sign that we are now trying to be self-sufficient, whether it's EV or whether it is solar cells, right? Briefly?
Well, one of the things which, various government functionaries are on record, they're saying that in this budget and before that, the idea was, you know, that all these things are happening and they are being anticipated, and you know that's going to affect the international trade. So, you know, yes, we are a continental size, within quotes, continental size economy. So a lot of it is going to, that helps us, you know, we are not in that sense dependent. But about 20-25% of the potential growth we are losing out because of all the action that's happening. Now, what they wanted to do is keep through this budget, at least this one, the country ready, the economy ready, so that when the rebound happens, you are right there. You have the ports and the roads, and you have the entrepreneurs, you have the technology.
Right, right.
You're not starting with a plan then.
Right. It's a future ready. I mean,
yes,
may I
yes.
add to that?
So,
future.
So that's what they wanted to do.
और चलते हैं रुपए का हाल जान लेते हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 12 पैसे मजबूत हुआ. एक डॉलर की कीमत 87.07 दर्ज की गई. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए शुल्क को रोकने के बाद डॉलर इंडेक्स में गिरावट का असर रुपए पर दिखाई दिया. विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 108.59 पर दर्ज किया गया. सो उदयन, जैसा कि आप बात कर रहे थे कि डॉलर की जिस तरह की कल कीमत के बाद आज नीचे आया, तो उससे कहीं ना कहीं रुपए को फायदा हुआ. तो रुपए की जो अभी मौजूदा कीमत है, उसकी स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, रुपए तो दबाव में रहेगा जब तक ये पूरा टैरिफ वाला फिल्म चलता रहता है. तो ये जब तक ये पूरी इसका शो खत्म नहीं हो जाता, जो कि मुझे लगता है 5-6 महीने लगेंगे, आप पाएंगे कि बोथ करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड डेट मार्केट सब में असर पड़ेगा. रुपए प्रेशर में जरूर रहेगा, पर मैं मुझे ऐसा लगता है, आप कह सकते हैं कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, कि रुपए फिर रिबाउंड करने के का भी पूरा पूरा चांस है. क्योंकि जैसे मार्केट्स अंडरस्टैंड करने लगेंगे कि टैरिफ्स का असर क्या पड़ रहा है, तो उसका असर जरूर डॉलर के ऊपर पड़ेगा, एंड उससे आप पाएंगे कि रुपए में एक बेहतर पोजीशन आएगी. पर इन द नियर टर्म एक प्रेशर बना रहेगा.
और एक अब अच्छी खबर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जहां 2014 में दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, आज उनकी संख्या बढ़कर 300 हो गई है. और अगर वैल्यू की दृष्टि से देखें तो मोबाइल फोन की जो मैन्युफैक्चरिंग 2014 में 18,900 करोड़ रुपए थी, वो आज 2024 तक 4,22,000 करोड़ रुपए हो गई है. और निर्यात की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम 1,29,000 करोड़ रुपए के टेलीफोन मोबाइल फोन निर्यात कर रहे हैं. उदयन, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में.
बिल्कुल, ये इसमें कोई डाउट नहीं है. हम 10 साल पहले हमें आदत थी कि जो फोन आते थे वो बाहर से आते थे, या भारत में भी जो बनते थे बाहर का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था. ऐसा नहीं कि वो इन्फ्लुएंस बिल्कुल गायब हो गया, पर ये देखते हुए भी अच्छा लग रहा है कि आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं. पर अमरीश, ये मैं कहना चाहूंगा, कई चीजें होती हैं उसका ना एक सिग्नलिंग इफेक्ट होता है. तो अगर आप एक मार्की एक एग्जाम्पल अगर दुनिया को सेट करना चाहते हैं कि हम कर सकते हैं, और खुद को और बाहर को, तो ये वो एग्जाम्पल है कि हम कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं. ये देखिए स्टोरी है
जी.
जो जब आप कामयाब होते हैं तो दूसरे लोग, एंटरप्रेन्योर उद्यमी जो होते हैं, दूसरे कंपनीज होते हैं, वो आके दूसरे एरियाज में भी आ जाते हैं. तो रोल मॉडल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस में, क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी को देख के दूसरे सक्सेस स्टोरीज फॉलो करते हैं.
ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. The government has said that it is planning to increase installed power generation capacity to 874 gigawatt by 2031-32. In a written reply in the Rajya Sabha, the Minister of State for Power, Sripad Naik, said at present installed power generation capacity is 462 gigawatt and there is adequate availability of power in the country. And still further, Union Textiles Secretary Neelam Shami Rao today said that the Bharat Text 2025 will reaffirm the attractiveness of India as a reliable, sustainable sourcing destination as well as investment destination at scale for textiles. Addressing the media in New Delhi, Secretary Rao said that entire event is a testament to India's commitment in becoming a global textile powerhouse. During the event, the secretary launched the Bharat Text 2025 app and website. The Bharat Text app, which is a part of the overall technology platform, is designed to facilitate seamless engagement, networking and information dissemination for this largest global textile event. I think this is the same event which is happening at Bharat Mandapam. राइट यस।
और एक और अच्छी खबर, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने पिछले वर्ष के अंत तक 157,000 स्टार्टअप को मान्यता दी है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद से सरकार ने इस योजना के प्रभावी अमल के लिए अनेक उपाय किए हैं। उदयन, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो सीधा हमारे दिमाग में आता है कि देश के विकास में जिस गति से, जिस तेजी से इन्होंने योगदान दिया, और एक बड़ा नंबर है 157,000 का, आप क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे?
अमरीश, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम देखें, जो स्टार्टअप्स को लॉन्च करने में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरे जितने इंक्यूबेटर्स वगैरह, जो इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें भारत आई थिंक नंबर 3 रैंक करता है वर्ल्ड में, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनमें से, स्टार्टअप्स में से जो कंपनियाँ कामयाब होकर निकल जाएंगी, आगे बढ़ेंगी, ये रोजगार और इनोवेशन का एक जरिया बनेगी। तो अगर हम विकसित भारत की तरफ हम जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो कंपनीज हैं, एग्जिस्टिंग जो वो एक डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वहाँ पे इतना लेबर जो फोर्स में जो एंट्री हो रही है उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बात तो ये है। दूसरी बहुत हार्टनिंग बात यह है कि बड़े शहरों से ये अब टीयर 2, टीयर 3 टाउन्स में जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके, जैसे आपने देखा होगा बजट में भी GCC के बारे में, टीयर 2, टीयर 3 टाउन्स में जाने के बारे में बात हो रही है, वहां पे जो होनहार युवक हैं उनको रोजगार मिले, इसी तरीके से वहां पे अगर ये सिस्टम बनता है तो स्टार्टअप्स भी वैसे फल फूल रहे हैं और वहां पे भी एक्सपैंड हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि बड़े शहरों में ही सीमित है दायरा, वो अब फैलता चला जा रहा है, एंड देन दैट्स हाउ हम एक इनोवेटिव कंट्री बनने के एक डेस्टिनेशन बन जाएंगे।
जी, जैसे कि जैसे आपने जो कहा, बहुत समावेशी होगा जब पूरे देश में उस तरह की स्थिति हो और सभी शहरों में सारे युवाओं को मौके मिले।
इनफैक्ट मेनी स्टार्टअप्स हैव बिकम यूनिकॉर्न्स,
एब्सोल्युटली,
दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंट्री।
या
And now let's move on. Well, China has announced imposition of retaliatory tariffs on a raft of U.S. products in response to U.S. government's decision to hike tariffs on certain Chinese products. The countermeasures announced by China's Ministry of Commerce include a 15% tax on coal and liquefied natural gas imports from the U.S. Crude oil, agricultural machinery, pickup trucks and large engine cars will face a 10% tariff. In addition, China has also announced the opening of an investigation into U.S. technology giant Google. Earlier, the U.S. President Donald Trump had announced a one-month delay in U.S. tariff hikes on Canada and Mexico after the two neighboring countries agreed to strengthen border security efforts. Uden, last time when Trump came to power as a president of United States, again, a similar thing had happened, but an international agency came and they there was a compromise between U.S. and China. You see something like that happening now?
Yeah, I mean, both the officials and the administration officials here, they're talking about having talks. And unfortunately, due to the COVID, some of the commitments China had made, they could not fulfill those commitments. They talked of buying something like $200 billion worth of whatever merchandise or whatever American-made products. Mm-hmm. So the sense is that they will, try and do that. Till then, the idea is to open things up for each other, and you will see quite a bit of handshake. Let's not forget, they might be adversarial in nature in terms of politics and maybe militarily in some places, but they have a very close economic relationship, US and China. And among the many things, China is one of the largest holders of US government securities.
Yes.
So a lot of the funding that's happening, American public debt, is owned by China. So they have been obviously moving out of it. Mm-hmm. But that is the kind of close relationship they have. So one can, in a certain sense, it's all in a way the kind of relationship we have with China. We 100 billion plus, maybe 125 billion kind of trade that we do. It's many fold, much larger than that. So there's a lot at stake. So they will probably come, and it's a question of when they're going to do it.
Lekin Udayan, jaisa aapne kaha ki China ne itne government ke US ke security bonds unke paas hain, aur dusri taraf hum dekh rahe hain Canada aur Mexico, dono North America ke country hain aur hamesha se borders milte hain America ke saath. To aisi halat mein, aur khaas taur se agar hum Canada ka zikr karein, wo kahin na kahin US interest ko bhi hurt kar raha hai jis tarah iske kadam Donald Trump utha rahe hain. To aise mein aisa kya karan hai ki अर्थव्यवस्था के जो बेसिक बातें हैं उनको दरकिनार करते हुए इस तरह की टैरिफ वॉर में ट्रंप फंस रहे हैं, इससे अमेरिका को क्या लाभ होने वाला है?
देखिए, वो ये तो हमारी सोच है
जी,
और अमेरिका में भी सोच है कि ये ऐसे कैसे है. ये जो टैरिफ जो है, ये एक पूरा मतलब 150 साल पहले जैसे इकोनॉमीज होती है, 150 से भी ज्यादा, तब वो कामयाब हुआ करती थी. अब इकोनॉमीज जो है,
यहाँ पे खासतौर से अगर हम WTO की बात करें, तरह तरह के नियम है जो बाइंडिंग है सारे देशों पे, जो भी WTO के मेंबर हैं उनको भी नजरअंदाज करके इस तरह की काम करना, ये कैसे?
देखिए, एक माइटस राइट वाली बात तो है, दूसरी बात है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप कुछ वादे करते हैं. कई लोग वादे करते हैं, वो ठीक से पूरा नहीं करते, पर वो राष्ट्रपति ट्रंप उसको पूरा करना चाहते हैं. तो वो उनका एक लॉजिक है
जी.
अब वो प्रूफ ऑफ द पुडिंग विल लाइन ईटिंग.
और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के 5 प्रमुख बाजारों में से 3 में आज बढ़त दर्ज की गई. हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 2.7% से अधिक, दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1% से अधिक और जापान का निकेई 0.7% से अधिक बढ़ा. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स लगभग स्थिर रहा. चीन में नववर्ष के अवकाश के चलते शेयर बाजार बंद रहे. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिलाजुला रुख रहा. अंतिम समाचारों के अनुसार फ्रांस का कैक 0.2% से ऊपर कारोबार कर रहा था. जर्मनी का डेक्स लगभग स्थिर था, जबकि लंदन के फुटसी में 0.1% से अधिक की गिरावट चल रही थी.
All right, let's take a look at the US markets now. Well, the US stocks ended in negative territory yesterday, but partly recovered from initial steeper losses as US President Donald Trump delayed tariffs on Mexico. The tech-heavy Nasdaq Composite slipped 1.2%, S&P 500 fell over 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average lost 0.28%. A look at the oil prices now. Oil prices eased today. Brent crude was trading over 1.3% down at $74.95 per barrel, and WTI crude plunged over 2.1% to trade at around $71.59 per barrel when reports last came in.
और चलते हैं सराफा बाजार का हाल जान लेते हैं. सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.1% गिरकर 83,270 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.19% बढ़कर 94,730 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.1% गिरकर 83,196 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं चांदी मार्च 2025 में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.17% बढ़कर 94,419 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. इस कार्यक्रम में भाग लेने, उदयन, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
All right, friends, let's close. But before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with gains of over 1.5%. Sensex surges over 1,390 points. Nifty closes above 23,700. Mobile manufacturing units in India registered growth from 2 in 2014 to over 300, says Electronic and IT Minister Ashwini Vaishnaw. And China announces imposition of retaliatory tariffs on US products. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor.
Namaskar, Ambarish Saxena.
Ambarish Saxena, signing off. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market